अगली बात, अल्लाह की सिफात में रिस्क देने या ना देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। रिस्क में तंगी या फराखी करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। दोनों की दलील सही सूरत बनी इसराइल की आयत 31 है, वला तक्तुलू औलादकुम खशयत इमलाक नहन नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन क़त्लहुम कान खितअन कबीरा। और अपनी औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल ना करो, हम इन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत औलाद का कत्ल एक बहुत बड़ा गुना है। इसी तरह सूरत सबा की आयत 36 में आता है, कुल इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा। ए नबी, इनसे कहो, मेरा रब जिसे चाहता है रिस्क कुशादा देता है, जिसका चाहता है तंग करता है। लेकिन अक्सर लोग इसकी हकीकत को नहीं जानते। सच है ना, अक्सर लोग रिस्क किसके हाथ में सोचते हैं? बैंकों के पास, तिजारत में, बिजनेस में, जॉब अच्छी है तो रिस्क होगा और फुला और फुला। एक रिवायत है इसी मज़मून पे, सही मुस्लिम की, अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहादीस अल्लाह तबारक व ताला से रिवायत करते हैं। क्या मतलब है इसका? हदीस कुदसी के उसमें लफ्ज़ अल्लाह ताला के होते हैं लेकिन नबी सल्लम की ज़ुबान से अदा होते हैं। क्या है वो बात? कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, बस मुझसे मांगा करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, बस मुझसे मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। महसूस करें इस बात को, इस वक्त हमारे तन पे जो कपड़े हैं ना, ये रब के दिए हुए हैं। जो खाना हमारे पेट में जाता है वो रब का दिया हुआ है, और रब ना दे ना तो इंसान अपना तन भी नहीं ढांप सकता। और अमूमन इन्हीं चीज़ों में शिर्क होता है ना, छोटी छोटी बातों में। अगली चीज़ जो आ रही है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा शिर्क होता है, और वो क्या है? औलाद देने या ना देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। बेटे और बेटियां देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। दलील है इसकी सूरह शूरा की आयत 49 और 50, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान की बादशाही का मालिक है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है, और जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, यानी कुछ बेटियां और कुछ बेटे, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, यानी कुछ भी नहीं देता। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। इसके बरक्स आज हमारे यहाँ क्या होता है? कुछ ख़वातीन को बेटी पैदा होने पे मैके भेज दिया जाता है। किसी औरत की इज्जत इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि उससे तीन चार बेटे पैदा हो गए, हालांकि ये दोनों काम अल्लाह के हाथ में है। और औलाद तलब करने के लिए जितने लोग कब्रों और दरगाहों पे जाते हैं, शायद ही उतने किसी और जगह जाएं। देखिए, जब अल्लाह ताला हमसे दुनिया की कोई नेमत कम रखता है ना, तो हमारे ईमान का बड़ा इम्तिहान होता है। इंसान बाज़ दफ़ा किसी एक नेमत के खातिर अपना ईमान बेच देता है, तो मुख्तात रहना चाहिए। बहुत सारे लोग भी फिर दोस्तों के रंग में आ जाते हैं मशवरे देने के लिए, वहाँ जाओ, फलां वहाँ गया था तो ये हुआ था, फलां की दुआ करा लो, फलां से करो। जी आप जी बुज़ुर्गों से। और ऐसे किसी बुज़ुर्ग की बात याद आ गई मुझे, किसी ने बताई कि एक बुज़ुर्ग थे तो लोग उससे बेटा या बेटी लेने जाते थे, और ख़ास तौर पे औरतें जब प्रेग्नेंट होती थी तो जाके पूछती थी कि बाबा जी हमें क्या देने वाले हैं। तो उसका तरीका क्या था कि एक दरख्त लगा हुआ था वहाँ, तो वहाँ वो बैठ के ना, तो अपनी जैसे झोली खोल के ना, दामन खोल के बैठ जाती थी और इंतज़ार करती रहती थी, तो ऊपर से कुछ गिरेगा। अगर पत्ता गिर जाए तो वो कोई और बेटा है, और अगर बेर गिर जाए तो वो बेटी है, और जिसको कुछ ना गिरे फिर उसका क्या हाल होगा? हाँ, इसी तरह किसी एक का बताया कि जब पीर साहब के पास जाती थी औरतें और वो पूछती थी कि अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि मेरे बेटा होगा कि बेटी होगी, तो पीर साहब क्या कहते थे? तुम्हारा बेटा होगा, लंबा सा लफ्ज़ करके बोलते थे, और साथ ही कहते थे बेटी होगी, दोनों लफ्ज़ बोल देते थे। बाद में जब बेटा होता था ना, तो लोग कहते थे, देखा पीर साहब ने बेटे का लफ्ज़ लंबा खींचा था तो वो हो गया, और अगर बेटी होती थी तो कहते देखो पीर साहब ने बेटी का भी तो लफ्ज़ बोला था। अब देखिए कि अकल घूम जाती है ना इंसान की। तो लिहाजा बेटे और बेटियां अल्लाह के हाथ में किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। तबरानी की एक रिवायत है इब्ने शहाब रदी अल्लाहु अन्हो से, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी बहन उम्मे कुलसूम रदी अल्लाहु अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाहु अन्हो से ही कर दिया। हज़रत रुकैया रदी अल्लाहु अन्हा हज़रत उस्मान के अक़्दे निकाह ही में फ़ौत हुई, लेकिन इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। अब बताइए कि अगर औलाद दे सकता कोई तो फिर दे सकते थे ना, अल्लाह के नबी दे देते, आप खुद ही ले लेते। आप अल्लाह के नबी को देख लें, आपके 3 बेटे आपके हाथों से फौत हुए बचपन में पैदा होते ही 1-2 साल का होके। एक बच्चे का तो इंतकाल ही उस वक्त हुआ जब अल्लाह के नबी की गोद में था, और इज़राइल आए और मलकुल मौत आए और बच्चे की जान ले गए। अल्लाह के नबी तो उस बच्चे की जान वापस नहीं ला सके। आज हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी रूहों को कब्ज़ करके बैठे हुए हैं? यानी बाज़ लोग अपने बुज़ुर्गों के बारे में ये राय रखते हैं कि इन्होंने रूहों को कब्ज़ किया हुआ है, और जिसकी रूह छोड़ देंगे तो वो तो वापस चला जाएगा, और जिसकी रूह खींच लें तो वो यानी दुनिया से चला जाएगा। बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, इससे अपने आप को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि शौरी और गैर शौरी तौर पर कहीं हमसे कोई शिर्क तो नहीं हो रहा। फिर अगली चीज़ जिसमें अमूमन शिर्क किया जाता है वो क्या है? सेहत और शिफा। ये दोनों चीज़ें भी अल्लाह ही के हाथ में हैं। सेहत और शिफा देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। सूरत शुरा की आयत 78 से 82 में आता है, अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन। अल्लाह ने ही मुझे पैदा किया और वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। सुभान अल्लाह। देखिए कि सारी चीज़ों में अल्लाह की तरफ निस्बत की, जब बीमार होने की बात की तो ये नहीं कहा कि जब वो मुझे बीमार करता है तो वही शिफा देता है, का वह इज़ा मरितु, जब मैं बीमार होता हूँ। यानी अपनी तरफ निस्बत ली। इसको नबियों का अदब कहते हैं कि इतने बाअदब होते थे कि अल्लाह ताला से बात करने का सलीका भी आता था, और बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की, लेकिन फहू व यशफीन, शिफा वो देता है। इसके बरक्स अमूमन लोगों का हाल क्या होता है? कोई खैर का काम हो जाए तो अपना ही नाम लेते रहेंगे, हाँ मैंने ऐसे किया था, प्लानिंग ही बहुत अच्छी की थी, तैयारी बहुत की थी, हाँ भाई जॉब तो मिलनी थी, इतनी मेहनत से पढ़ा तो था तभी तो होगा, खाना मैं तो बहुत अच्छा पकाती हूँ, मैं तो बड़े दिल से पकाती हूँ, हाँ, और ज़रा कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो हम डाल देंगे किसी दूसरे के खाते में, नहीं वो आजकल चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, वो आजकल ये मसला, आजकल वो है। वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला शिफा आप देते हैं, बीमार मैं होता हूँ। इसी तरह रिवायत है हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सही बुखारी में, कहती हैं कि अल्लाह के नबी बीमार लोगों के जिस्म पर अपना दायां हाथ फेरते, फिर ये दुआ फरमाते, आप हाईलाइट कर सकते हैं उसके लफ्ज़, कि अज़हबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफाल ला युगादिरु सक़मा। बाद वह सक़मा आता है और यहाँ सक़मा, इसका तर्जमा क्या है? ऐ लोगों के रब, बीमारी दूर फरमा और शिफा इनायत कर, क्योंकि तू ही शिफा देने वाला है। असल शिफा वही है जो तू इनायत फरमाए, ऐसी सेहत अनायत फरमा कि किसी किस्म की बीमारी ना रहे। ये सही बुखारी की रिवायत है। आप देखिए कि इंसान जब बीमार होता है ना तो उस वक़्त भी उसका ईमान बड़े ख़तरों में होता है। जितना ज़्यादा बीमारियों के वक्त में इंसान अपने अकीदे को मजबूत रख सके उतना ही उसके लिए फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ एक जुमला मारूफ है कि जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान भी जाता है। बाज़ दफ़ा इंसान की बीमारी सेहत जाती है तो साथ ही उसका ईमान भी ख़तरे में चला जाता है। तो इस सारी चीज़ों से अपने आप को रोकना चाहिए कि कोई भी बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और से उसकी शिफा नहीं मांगनी। अगली बात तो बड़ी प्यारी है, और वो क्या है? हिदायत। हिदायत देना सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है। आपको ये सारे टॉपिक सुनते वक्त ऐसे नहीं लग रहा, जो मुझे तो यही फील हो रहा है कि अल्लाह की ज़ात के हाथ में कितना कुछ है, इतना माशाल्लाह, हम जैसे अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं ना कि इतना दौलतमंद है मेरा रब। हम अपनी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं, देखो हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास जूते हैं, हमारे पास बुक्स हैं, हमारा घर है, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला के हाथों में जो कुछ है बड़े बड़े खजाने, इसीलिए तो बार बार आता है लिल्लाह ही माफिस समावाती व माफिल अर्थ, सब कुछ उसी का है। तब हिदायत के लिए भी हम बहुत तड़पते हैं, कितनी औलादें हैं जो माँ बाप की हिदायत के लिए तड़पती हैं, और कितने माँ बाप है जो औलाद की हिदायत के लिए तड़पते हैं। तो हिदायत कौन देता है? अल्लाह देता है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला का नाम है, एक अस्माउल हुस्ना में एक नाम है अल हादी, हिदायत देने वाला। दलील है सूरत कसस की आयत 56, इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह ताला इन लोगों से खूब वाकिफ़ है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। और हदीस है हज़रत अबू ज़र से, सही मुस्लिम में रिवायत है कि जिन हदीसों में अल्लाह के नबी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं उन्हीं में से एक है, यानी हदीस कुदसी, कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दूँ, बस तुम मुझ ही से हिदायत मांगो, मैं तुमको हिदायत दूंगा। तो हमारे लिए भी इसमें अमल की बात क्या है कि किसी के लिए भी आपने हिदायत मांगनी है ना, सीधा रब का दरवाज़ा खटखटा दें कि अल्लाह दिल आपके हाथ में, मेरे इस बच्चे को हिदायत दे दे। इस पे एक बड़ा अच्छा वाक्य याद आ गया, सच्चा वाक्य, वो सुना देती हूँ। बड़ी प्यारी साथी है हमारी एक, तो इस तरह से दर्स थे उनके साथ भी हुआ, और बच्चों को टिप्स, बच्चों की तरबियत पे हमने कुछ टिप्स शेयर की थी कि बच्चे तंग करें तो क्या किया जाए। खैर, एक दिन आई तो कहने लगी कि मेरे बच्चों ने कल मुझे बहुत तंग किया। छोटे छोटे बच्चे, बड़े प्यारे से बच्चे हैं, 2-3 साल के, जो बच्चे शऊर से इस तरह का बीच की एज के थे, 2 या 3 बच्चे थे। कहने लगी कि कल ये मुझे बहुत तंग कर रहे थे। खैर, मैंने जब इनको समझाने की कोशिश की तो ये नहीं समझे, तो मैंने सजदे में सर रखा और मैं रोने लग गई। और मैं सजदे में अल्लाह से कह रही थी जैसे, अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे, अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे। कहने लगी, जो ही मैंने ये काम किया मेरे ये बच्चे भी सजदे में गए और रो के कहने लगे, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। कहती, मैंने तो सर सजदे से उठा लिया लेकिन मेरे बच्चे कितनी देर रोते ही रहे कि अल्लाह हमें हिदायत दे। तो मैंने कहा कि देखे कि बच्चों को भी इस चीज़ की समझ होती है ना, तो हल मिल गया ना। अगर इसके बदले में अगर वो खुद उनको कुछ कहती तो हो सकता है कि वो और कितना ज़्यादा तंग करते। तो किसी भी इंसान के लिए कभी मायूस ना हो, हमारी हमारे बुलाने में कमी है। अभी हम तड़प के नहीं बुला रहे, अभी हम उनके लिए रातों को तड़पे नहीं, अभी हम तहज्जुदों में नहीं तड़पे, वरना जिस दिन हमारे दिल से बात निकलेगी इंशाल्लाह ताला बिगड़े हुए लोग ज़रूर दीन की तरफ आते हैं, वो ज़रूर अल्लाह के हुक्म से अपनी तरफ अल्लाह ताला उनको बुलाता है। फिर उसके बाद अगली चीज़, नेकी करने और गुनाह से बचने की तौफीक देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। सूरत हूद की आयत 88 है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी कौम से कहा, मैं तो अपनी इस्तेआत के मुताबिक इस्लाह करना चाहता हूँ, और जो कुछ करना चाहता हूँ इसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है, इसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। अबू दाऊद की रिवायत है हज़रत माज बिन जबल से, फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ कर फरमाया। देखिए सहाबा कराम की कितनी सच्चाई है कि जो एक्शंस होते थे आपके वो भी नोट कर लेते थे, सिर्फ आपके लफ्ज़ प्रिजर्व नहीं है बल्कि आपके एक्शंस भी प्रिजर्व थे। क्या इरशाद फरमाया, ए माज, तुझे ताकीद करता हूँ कि किसी फ़र्ज नमाज के बाद ये कलेमात कहना न छोड़ना। क्या? कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह, मुझे अपना जिक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अबू दाऊद की ये रिवायत है, और ये बिल्कुल नमाज के बाद जैसे सलाम फेरते हैं ना फ़र्ज़ नमाजों के, तो उसके अंदर आपको ये दुआ मांगनी चाहिए, इससे आपकी इबादत भी अच्छी होगी। कभी आपने फील किया कि आपका इबादत में दिल नहीं लगता? इस वक्त तो नहीं, कुछ ऐसे लोग बड़े ड्राउजी लग रहे हैं मुझे, सोए सोए, या तो ऑक्सीजन की कमी हो गई अंदर है, नींद आ, कितने लोगों को नींद आ रही है? हाँ, तो पढ़िए सारे फिर ऊंची आवाज़ से मेरे साथ, मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ें ताकि हमारी नींद भाग जाए। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा
आइन्नी
आइन्नी
अला जिक्रिका
अला ज़िक्रिका
व शुक्रिका
व शुक्रिका
व हुस्नी
व हुस्नी
इबादतिक।
इबादतिक
पढ़ें ज़रा 3 दफ़ा। चलिए अब देखते हैं कबूल हुई है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नफ़े और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। हम क्या सोचते हैं नफ़े के बारे में? प्रॉफिट बैंकों के पास है, कारोबार में है, फलां बिजनेस करोगे तो उससे इतना प्रॉफिट होगा, मिलेगा तभी जब रब चाहेगा। तकदीर का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। दोनों की दलील सूरत फतह की आयत 11 यानी 11, कुल फमई यम लिकुलकुम मिन अल्लाही शैया। ए नबी, इन मुनाफिकों से कहो, कौन है जो तुम्हारे मामले में अल्लाह ताला के फैसले को रोकने का कुछ भी इख्तियार रखता है? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या नफ़ा पहुंचाना चाहे, तुम्हारे आमाल से अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है। और हदीस बड़ी प्यारी है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से पहुंची, कहते हैं एक दिन मैं अल्लाह के नबी के पीछे सवार था। कितने खुशकिस्मत है ये, अल्लाह के नबी के साथ एक सवारी पे थे। अल्लाह अकबर। आपने इरशाद फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद कलमे सिखाता हूँ जो ये हैं, अल्लाह ताला के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह ताला दीन और दुनिया के फितनों में तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह को याद कर तो तू उसे अपने साथ पाएगा, जब सवाल करना हो तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से सवाल कर, जब मदद मांगना हो तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांग, और अच्छी तरह जान ले, या आप भी जान लें, गौर से इस जुमले को सुने, क्या अगर सारे लोग तुझे नफ़ा पहुंचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकेंगे सिवाय इसके जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया, और अगर सारे लोग तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें तो तुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे सिवाय इसके जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया। कलम यानी तकदीर लिखने वाले कलम उठा लिए गए, और सहीफे जिनमें तकदीर लिखी गई है खुश्क हो चुके हैं। क्या पता चला? कोई नुकसान नहीं दे सकता। हमारी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा इस गम में गुजर जाता है कि लोग मुझे नुकसान ना दे दे, सच, फलां जादू ना कर दे, फलां मेरे खिलाफ़ सिखा ना दे। बीवियां शोहरों को ससुराल में जाने ही नहीं देती हैं अकेले कि कहीं सास इसको मेरे खिलाफ़ कोई जुमला ना सिखा दे, कहीं मेरी नंदे मेरे खिलाफ़ मेरे शोहर को ना कर दें। और फलां आजकल जॉब पे मेरी लेग पुलिंग कर रहा है और मेरी जॉब ले रहा है, ऐसे जुमले सुनते रहते हैं, खौफ का शिकार रहते हैं कि हमारी नेमत कोई ना ले ले। जिसको इस बात का यकीन हो गया ना कि लेने वाला भी वो है और देने वाला भी वो है, सारी दुनिया मिल जाए ना किसी को नफ़ा देने के लिए, नहीं दे सकते जब रब ना चाहे। माँ बाप की बड़ी तमन्ना होती है कि औलाद के लिए खैर के फैसले हों, कोशिशें भी करते हैं, नियत भी करते हैं, बड़ी जांच जांच पड़ताल भी करते हैं, लेकिन बेटियों को गम मिल जाते हैं, तलाक हो जाती है, अच्छे लोगों से वास्ते नहीं पड़ते। बाद में बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। ये कौन ज़ात है? ये अल्लाह की ज़ात है। तो आप महसूस कर रहे हैं इन चीज़ों को सुनते हुए कि फिर सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे करनी है? अब देखिए कि हम दुनिया वालों के साथ चीज़ों को ले देखते हैं ना, तो हम फ़ौरन उनसे दोस्ती करने लगते हैं। एक किसी की बात से याद आ गई, अब्दुल्ला बहावलपुरी थे तो वो यही कहते थे कि लोग हमेशा बड़े बड़े चौधरियों से और थानेदारों से और जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना ओहदों पे, उनसे दोस्तियाँ करना चाहते हैं। मैंने तो हमेशा अल्लाह से दोस्ती की, और जब कोई मौका ज़िंदगी में आता है, ऊंच नीच होती रहती है ज़िंदगी में, तो कहते हैं कि उस वक्त मैं तो अल्लाह को जाके कहता हूँ कि अल्लाह तू बता मैं किधर जाऊँ, लोगों के तो कितने ही दार है, वो किसी MPA के पास जाएंगे, MNA के पास जाएंगे, तू बता मैं किधर जाऊँ, मेरा तो तू ही है। और कहते हैं कि मेरा काम फ़ौरन हो जाता है, मुझे वो मुश्किलें ही नहीं आती जो लोगों को आती हैं। तो अल्लाह से दोस्ती करना सीखें, फिर फिर आखिरी बात इस टॉपिक की क्या है कि ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह ही के हाथ में है, डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। इसकी दलील सूरत मोमिन की आयत 68 है, हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, और वो अल्लाह ही है जो ज़िंदा करता है और मारता है। जब किसी बात का फ़ैसला कर लेता है तो बस एक हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। और हदीस से जो इसकी दलील है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा, एक जगह थी ज़ातुर रिक़ा, वहाँ एक जंग हुई थी, उसका नाम है ये ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में हम रसूलुल्लाह के साथ थे। दौरान सफ़र एक घने साए वाला दरख्त आया जिसे हमने रसूलुल्लाह के आराम के लिए छोड़ दिया। इतने में एक मुशरिक आदमी आया और अल्लाह के नबी की तलवार जो दरख्त के साथ लटक रही थी सौंत कर बोला, क्या तुम मुझसे डरते हो या नहीं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। मुशरिक कहने लगा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? फ़मै यमनउका मिन्नी। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। अबू बकर इस्माइली ने अपनी सही में ये बात भी रिवायत की कि जब मुशरिक ने कहा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह। इस पर तलवार मुशरिक के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी, यानी खौफ की वजह से, और अल्लाह के नबी ने उठा ली। फिर आपने पूछा, तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो मुशरिक ने कहा, तुम बेहतर पकड़ने वाले बनो, यानी मुझ पर रहम करो और मुझको छोड़ दो। इसे नववी ने ज़िक्र किया। तो इसे क्या पता चलता है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर से फ़ायदा लिया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये यकीन रखिए कि ज़िंदगी है तो फिर मिलेगी। डॉक्टर्स के पास इलाज है बीमारियों का, मौत का इलाज किसी के पास नहीं है। और कोई बंदा बीमारी से नहीं मरता, अल्लाह के हुक्म से मरता है। वो सेहतमंद पे अल्लाह का हुक्म आ जाए तो भी मर जाएगा, और बीमार पे आ जाए तब भी मर जाएगा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवील तरीन टॉपिक पूरा हुआ, तौहीद सिफात। अब अगर हम इस किताब से ये चीज़ें ना पढ़ते तो क्या हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होते? सोचने की बात। और कितनी ज़रूरत है ये किताबें आम करने की। वो लोग जो यहाँ नहीं, आज आपके साथ आपके दोस्त आपके साथी जो नहीं सुन रहे, आप सोचिए कि आप अपने लफ्ज़ों में 10 बातें भी कर देंगे ना, कभी नहीं मानेंगे। जो सामने किताब खुल के हवाले से बात होती है ना, उससे शरह सदर होता है, आपको यकीन होता है। आप एक एक बात जो निकली है उसके ऊपर आपने हदीस और कुरान की आयत सुनी है। फिर इसके आखिर में आप देखिए कि आप पूरा कंक्लूजन कर रहे हैं कि तौहीद सिफात के बारे में शिर्क या उमूर, यानी इस तौहीद पे अब कहाँ शिर्क होता है। इसकी तकरीबन 9 चीज़ें हैं हमारे सामने, अपने लफ्ज़ों में बताऊंगी। पहली चीज़ यह है कि ये सोचना कि इस कायनात का निज़ाम अल्लाह के सिवा कोई नबी वली कोई और दूसरा भी चला रहा है, और लोग हकीकतन ये नज़रियात रखते हैं कि इस कामों में अल्लाह के साथ हमारे पीर साहब का हिस्सा है, तभी तो आप देखिए कि लोग ऐसी बातें करते हैं। एक ऐसी कहानियाँ कभी आपको वैसे पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जब तक आपको खुद ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तौहीद के, तो बाज़ दफ़ा इंसान गाफिल होता है। लेकिन मैं कभी कभी रेफरेंसेस के लिए इस तरह की बुक्स खुद ही लोग ही छोड़ जाते हैं तो उसमें देखती रहती हूँ। तो ऐसी एक कहानी थी, किसी ने पता नहीं अब्दुल कादर जिलानी साहब का नाम ले कर रखा हुआ था कि उनके पास रूहों के ख़जाने हैं। और एक मौके पर ऐसा हुआ कि एक औरत थी और जवान थी, और उसके शौहर का इंतकाल हो गया, और जूँ ही उसके मियाँ की जान गई तो उसने तो कहा कि पीर अब्दुल जो भी उनके पीर साहब थे उनका नाम लेके कहा कि मेरे शोहर की जान कैसे चली गई, मैं तो हर हफ्ते या महीने 5.25 रुपए की न्याज देती हूँ आपके नाम पे, और नऊज़ु बिल्लाह इसके बदले में आप मेरे से बचाएंगे। कहते हैं उसमें ये लिखा हुआ था कि फिर जब ये बात सुनी और उन्होंने तो फ़ौरन मलकुल मौत को पैगाम भेजा कि हो ना हो इसकी रूह वापस करो, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। और कहते हैं कि उनके इस कहने पे मलकुल मौत ने वापस उसकी रूह उस बंदे में डाल दी और वो ज़िंदा हो गया। अब आप बताइए कि जहाँ ऐसी कहानियाँ आम होंगी तो कौन आपकी तरह 3-3, 4-4 घंटे बैठ के तौहीद के और कुरान और सुन्नत के टॉपिक पढ़ेगा? वो दीन बड़ा आसान लगता है जिसमें आप बस 5.25 रुपए की न्याज दे दें, 2 रुपए की दे दें, 1 अंडा दे दें सदक़े में, और आप दाल मसूर दे दें, और बुज़ुर्ग आपके लिए ये काम करते रहें, और आप मौज और मस्ती करें। तो लिहाजा ऐसा सोचना कि कोई और आपके इन कामों में अपना हिस्सा रखता है अल्लाह के कामों में, ये शिर्क है। दूसरी चीज़, ज़मीन व आसमान के ख़जानों में किसी और का तसरुफ़ समझना, ये भी शिर्क है। तीसरी चीज़, قیامت کے روز کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے، قبول کرنے یا نہ کرنے کو، ثواب یا عذاب دینے، کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے اس اختیار میں کسی نبی، ولی، غوث، قطب اور ابدال وغیرہ کو سمجھنا شرک ہے. غیب کا علم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، یعنی غیب کے اندر بھی کسی اور کو شامل سمجھنا یہ بھی شرک ہے. پھر اگلی چیز، دلوں کو پھیرنے والے یعنی ہدایت دینے، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے. اور یہاں میں نے دیکھا کہ لوگ وظیفے کرتے ہیں اور کراتے ہیں، یا ودود کا وظیفہ پڑھو اتنی دفعہ تو شوہر آپ کے قدموں میں محبت پیدا ہو جائے گی. سنا ہوا آپ نے وظیفہ؟ ہاں، سورت قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سورج کو قبضے میں اپنے رکھتے ہیں، یعنی اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، قرآن کھول کے دکھا سکتی ہوں بعد میں. تو میں نے ایک صاحبہ تھیں، لڑکی تھی ینگ، میرے پاس ایک پرچی لے کے آئی، کہنے لگی کہ مجھے کسی نے ایک وظیفہ بتایا، ذرا چیک کر لیں کہ میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. میں نے کہا کیا وظیفہ دکھائیں؟ پرچہ کھولا تو قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، غالباً میں بھول نہیں رہی سورہ صافات کی آیت ہے یہ، کیا اس کا خلاصہ کیا، قبض نہ ہو لئی ہی قبضاً یسیراً کا لفظ کچھ اس میں آتا ہے، کہ جس کا خلاصہ یہ کہ ہم نے سورج کو اپنے قبضے میں رکھا، یعنی کہ سورج ہمارے حکم سے نکلتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. تو کہنے لگی کہ یہ آیت مجھے کتنی دفعہ اور کیسے پڑھنے کو کہا. میں نے کہا کیوں کہا، وجہ کیا؟ کہنے لگی، وہ اس کی ماں بھی تھی پاس، کہنے لگی میری اس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور کسی خاص لڑکے سے ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہو، لیکن ان کا ملان ہی نہیں ہے. تو بابا جی، یہ بزرگ صاحب نے کہا تم یہ آیت پڑھو تو دیکھنا وہ لڑکا تمہارے قبضے میں آ جائے گا. اور وہ قبضہ کیا تھا؟ سورج کی باتیں، چاند کی باتیں، آپ لوگوں کے لڑکوں کو قبضے میں کرتے ہیں. اب ذرا سوچیے، یعنی عقل کام کرتی. اسی طرح وہ سورت حدید کی آیت ہے نا، کہ حدید کی نہیں کسی اور کی آیت ہے، کہ وَبَصَرُكَ يَوْمًا حدید، قیامت کا تذکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی جیسے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پتھر کو پھاڑنے والی نگاہیں ہو جائیں گی انسان کی. تو کسی کو میں نے دیکھا اور وہ وظیفہ کسی نے لکھ کے دیا تھا کیا، کہ تمہاری آئی سائٹ ویک ہے تو اس کو پڑھو، تمہاری آنکھیں، تمہاری روشنی ٹھیک ہو جائے گی. یہ سب کھیل ہے ایسی چیز. جی یہ پتہ نہیں کہتے کون ہے. دیکھیے کہ ہمارے دین میں قیل اور قال نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی تو پھر تو ہر ایک کہہ دیتا کہ یہ بات ہے. یہ سند ہمارے دین کا تحفظ ہے. سند کیا ہوتی ہے؟ چین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک وہ بات کیسے پہنچی. تو لہٰذا ان چیزوں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کلیئر رکھنا چاہیے، کسی قسم کا شک نہ آئے. باقی اس کے اندر آپ دیکھیے کہ دلوں کو پھیرنے والا، ہدایت دینے والا، پھر رزق کی تنگی یا فراخی، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، اولاد دینے یا نہ دینے والا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جس کے ہاتھ میں ہیں، اور دلوں کے بھید صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں. اور وہی ذات ہے کہ جو واقعی انسان کے لیے بہت زیادہ ان چیزوں کو اچھا کر سکتا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں. تو یہاں پہ توحید کی تین قسمیں پوری ہوئیں،